सुबह से शाम की 4 बज चुके थे, लेकिन दीक्षांत ने अभी तक माही को फ्री नहीं किया था। वो बार बार किसी डमी डॉल की तरह कपड़े बदल बदल कर चेंजिंग रूम से बाहर आ रही थी और दीक्षांत को दिखा रही थी। अब तक वो बुरी तरह थक चुकी थी और ये थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। माही ने चेंजिंग रूम में रखे अपने पर्स से फ़ोन निकालकर टाइम देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ गॉड, शाम के 4 बज गए, सीरियसली? और दीक्षांत सर किसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं कि मुझे अब तक नहीं पता? और ये सारी ड्रेस मैं क्यों ट्राई कर रही हूँ? मैं कोई नौकर नहीं हूँ। दीक्षांत ने जब देखा इस बार माही को ड्रेस बदलने में टाइम लग रहा है, तो उसके मुंह पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने मन में कहा, बहुत जल्दी थक गई तो मिस माही। उसने वहां खड़ी सेल्स गर्ल को इशारा किया कि माही को बुलाकर लाए। वहीं माही ने अपना फ़ोन वापस रखते हुए जल्दी से नई ड्रेस निकालकर पहन ली और तभी चेंजिंग रूम का दरवाज़ा लॉक हुआ। उसने हड़बड़ाकर सामने से उसे लड़की ने कहा, सर आपका वेट कर रहे हैं, इतनी देर क्यों लग रही है आपको? वो सेल्स गर्ल माही से गुस्से में बात कर रही थी, जैसे मजबूर। माही ने जबड़े भींचते हुए कहा, सबको गुस्सा निकालने के लिए बस मैं मिल गई हूँ। उसने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया और एक बार खुद को मिरर में देखा। इस बार वाली ड्रेस काफ़ी खूबसूरत थी और इतनी ज़्यादा रिवीलिंग भी नहीं थी। वो विदाउट स्लीव्स की एक वाइट फ्रॉक थी जो माही को घुटनों तक आ रही थी। वो एक लंबी सांस भरते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आई और दीक्षांत, जो उसे कुछ बोलने वाला था, उसके सारे शब्द जैसे उसके जहां में ही दफन हो गए जब उसने माही को इतनी खूबसूरत ड्रेस में देखा। दीक्षांत ने जब कुछ देर तक कोई रिएक्शन नहीं दिया तो माही ने धीरे से कहा, सर क्या एक और ड्रेस ट्राई करनी है? दीक्षांत लगभग हड़बड़ाते हुए होश में आया और फिर सोफे से उठकर अपना जैकेट सही करते हुए बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जो कपड़े तुम पहनकर आई थी उनको अब कार में छोड़ देना और ये ड्रेस पहन के तुम जाना। उसके बाद उसने सेल्स गर्ल से कहा, और जितनी भी ड्रेसेस ने ट्राई किया है सबको पैक कर दो, 10 मिनट में वो सारी ड्रेस मेरी गाड़ी की डिग्गी में होनी चाहिए, मुझे किसी को गिफ्ट करनी है। माही का पूरा चेहरा लटक गया, मतलब उसने इतनी सारी ड्रेस पहनी तो सारी की सारी दीक्षांत बस ट्राई करने के लिए देख रहा था, वो किसी और को गिफ्ट करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एक कैफे के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें से अपनी पिंक साड़ी को ठीक करती हुई त्रिशा बाहर आती है। उस पिंक साड़ी में वो कमाल लग रही थी और इस बात का घमंड उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। वो टैक्सी वाले भैया को किराया देते हुए तेज कदमों से कैफे के अंदर बढ़ गई। आंतरिक टेबल पर एक नौजवान पहले से त्रिशा का इंतजार कर रहा था। उसने व्हाइट शर्ट, उसके नीचे ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो टेबल को बजाते हुए कैफे में अपनी नजरें घुमा रहा था। उसने जैसे ही त्रिशा को देखा वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। त्रिशा उसके सामने बैठते हुए बोली, क्या हुआ, रिस्पेक्ट दे रहे हो क्या? विक्रम ने होश में आते हुए कहा, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई, कुछ दिन पहले तो नहीं थी? त्रिशा ने आंखें छूटी करके कहा, मेरे साथ फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, जिस काम के लिए आए हैं पहले उसी के बारे में बात करते हैं। विक्रम ने झलवाकर कहा, तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है? मैंने खुद कहा था तुमसे कि उस इंसान का नाम मीटिंग में डिसाइड करूंगा और वो भी तब जब वो फ्री हो जाएगा, फिलहाल वो बहुत ज्यादा बिजी है। त्रिशा ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, पर मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है, मुझे उससे अभी जानना है आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। विक्रम उससे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन बज उठा। उसने त्रिशा को हाथ दिखाकर रोका और फिर फ़ोन निकालकर फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देखा और उसकी आंखें फैल गई। उसने त्रिशा को हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया और फिर खुद फ़ोन उठाकर कान से लगाते हुए जड़ से उठकर त्रिशा से कुछ दूरी पर चला गया। विक्रम ने घबराहट से अपना सलाइवा निगलते हुए कहा, हाँ अद्वैत भाई, कोई ज़रूरी काम था, आप मुझे घर बुला लेते। अद्वैत ने उसकी बात पूरी होने से पहले अपनी तेज आवाज में कहा, उस लड़की का क्या हुआ जिसको हमने अमर से दूर किया था? विक्रम ने जल्दी से कहा, भाई आज मैं इस लड़की के साथ हूँ, वो जिद कर रही है कि उसे आपसे मिलना है, जिसकी वजह से उसकी और अमर रावत की शादी नहीं हुई। उसे लग रहा है अमर रावत ही उसके लिए सबसे अच्छा पति बन सकता था और हमारी वजह से वो सारा हक उसकी बहन को मिल गया, वो काफी गुस्से में है। ये सुनकर अद्वैत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो गली गली में अमर रावत के दुश्मन ढूंढ रहा था और साथ में उसकी पत्नी के भी, और वो तो उसकी खुद की बहन निकली। तुम ज्यादा देर मत करो, उस लड़की को मेरे पास आज ही लेकर आओ, उसकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। ये बोलकर अद्वैत ने फोन कट कर दिया। तो वहीं विक्रम ने हैरानी से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अद्वैत भाई को क्या हो गया है? फिर वो गहरी सांस छोड़कर वापस त्रिशा के पास गया और उसके सामने बैठते हुए बोला, बहुत अच्छा लक है तुम्हारा, भाई ने सामने से फोन किया है कि उसे तुमसे मिलना है, चलो अभी चलते हैं। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठा, वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। त्रिशा भी मुस्कुराते हुए विक्रम के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद वो दोनों विक्रम की बाइक पर बैठकर अद्वैत के विला के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर त्रिशा ने जैसे ही अद्वैत के घर को देखा तो बस देखती ही रह गई। उसने विक्रम से कहा, ऐसा लगता है तुम्हारा भाई काफी बड़ा आदमी है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आपको सिर्फ मेरा भाई नहीं है, वो इस पूरे शहर का भाई है, अद्वैत दादा, किशनगढ़। त्रिशा ने नाम अपने मन में कहा, और उसकी अमर से क्या दुश्मनी हो सकती है। फिर वो दोनों तेज कदमों से चलते हुए अंदर चले गए। अद्वैत पहले से हॉर में बैठा त्रिशा का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही त्रिशा को देखा उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई और उसने मन में कहा, ये भी उसे फुलझड़ी से कुछ कम नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरा मन उसी पर अटका हुआ है तो मैं इस पर हाथ साफ नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोहरा है, इतनी आसानी से भी इसे जाने नहीं दूंगा। त्रिशा आराम से चलती हुई आ रही थी कि अचानक ही दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और त्रिशा ने हैरानी से कहा, मैं खुद जा रही हूँ ना उनसे मिलने के लिए, तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। वहीं विक्रम भी हैरान था, उसे पता नहीं था अद्वैत त्रिशा को अपने पास बुलाकर उसके साथ क्या करना चाहता था। वहीं अद्वैत ने किसी शैतान की तरह हंसते हुए कहा, अरे घबराओ मत फुलझड़ी, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है। फिर उसने उन दोनों लोगों को त्रिशा को छोड़ने का इशारा किया और त्रिशा गुस्से से चलती हुई अद्वैत के सामने आ खड़ी हुई। अद्वैत ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर उसे पानी का ग्लास ऑफर करते हुए बोला, तुम्हें किडनैप होने की एक्टिंग करनी है। अद्वैत दादा सीधा मुद्दे की बात करता है, इसलिए तुम्हें एक डेमो दिखाया था कि तुम किस रूप में इस घर में आई हो। यहाँ तुम्हें सारी मेहमान नवाजी मिलेगी, लेकिन बाहर वालों के लिए तुम यहाँ एक कैदी हो। त्रिशा को समझ नहीं आया उसके साथ ये करके अद्वैत को आखिर हासिल क्या होने वाला था। त्रिशा के चेहरे पर आए सवालों को देखकर अद्वैत ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो फुलझड़ी, बहुत जल्द सारा चिट्ठा तुम्हारे सामने होगा और हम तुम्हारे फैसले की भी कद्र करेंगे, क्योंकि सुनने में आया है तुम भी अपनी छोटी बहन से काफी नफरत करती हो, क्योंकि उसने तुम्हारा पति जो छीन लिया है तुमसे।
अद्वैत को बखूबी पता था कि यहाँ जानवी की कोई गलती नहीं है, उसकी शादी अमर से सिर्फ और सिर्फ अद्वैत की वजह से हुई है, लेकिन फिलहाल वो त्रिशा के गुस्से को हवा देना चाहता था और जो धीरे धीरे लग भी रही थी।